आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, मेरा नाम अनु है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अध्याय चुंबकत्व। ये कक्षा छठी के विषय विज्ञान का 13वां अध्याय है और क्योंकि हमने ये अध्याय पिछली क्लास में शुरू कर दिया था, इसलिए आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेंगे कि हमने पिछली क्लास में इस अध्याय में क्या क्या पढ़ लिया था। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था चुंबक के बारे में पढ़ना। आप लोगों को पता है चुंबक जो होता है वो लोहे की चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, और जब भी हम किसी चुंबक को लोहे की चीज़ के पास ले जाते हैं तो वो चिपक जाता है उस लोहे की चीज़ से। तो ये आप लोगों को मैग्नेट के बारे में पता है, चुंबक के बारे में पता है। इसी के साथ में हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि मैग्नेट से रिलेटेड स्टोरी क्या थी। मैग्नेट के नाम जो पढ़ा था मैग्नेट, इसके ऊपर एक स्टोरी थी जिसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था। मैंने आप लोग को बताया था कि प्राचीन यूनान में एक जगह का नाम है यूनान, वहाँ पर जो लोग रहा करते थे, प्राचीन समय के जो लोग रहा करते थे, उनमें से एक गडरिया था। गडरिया होते हैं जो शीप को यानी कि भेड़ों को या फिर बकरियों को चराते हैं, उन्हें गडरिया कहते हैं। तो प्राचीन यूनान में एक गडरिया रहा करता था जिसका नाम था मैग्नस। वो अपनी भेड़ों को चराने के लिए पहाड़ पर जाया करता था। और एक दिन क्या हुआ कि जब वो अपनी भेड़ों को चरा रहा था, तो जब वो अपने भेड़ों को चराता था तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको वश में रखने के लिए वो एक डंडे का इस्तेमाल करता था, और उस डंडे के टिप पर, डंडे के एक एंड पर एक लोहे की टोप लगी हुई थी। तो जब वो अपनी बकरियों को, भेड़ों को चरा रहा था पहाड़ के ऊपर, तो उसका जो लकड़ी था वो गिर गया, और जब वो गिर गया तो उसने उसको उठाने की कोशिश की। जब उसने उस लकड़ी को उठाने की कोशिश की तो उसको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ा। तो आमतौर पर अगर आपकी कोई लकड़ी की चीज़ गिर जाती है तो आपको ज़्यादा जोर लगाना नहीं पड़ता है, लेकिन मैग्नस को बहुत आश्चर्य हुआ कि उसको अपनी लकड़ी की चीज़ उठाने में इतनी ज़्यादा फोर्स क्यों लगानी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों करनी पड़ रही है। तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि उसकी जो छड़ी थी उसके ऊपर लोहे का कवर था, लोहे का टोप लगा हुआ था। तो इसी वजह से वहाँ पर जो पहाड़ था जिस पर वो गडरिया अपने भेड़ों को चराने के लिए लेके जाता था, कहते हैं कि वहाँ पर उस पहाड़ के अंदर प्राकृतिक रूप से मैग्नेट मौजूद था, वहाँ पर चुंबक मौजूद था, और इसीलिए उस गडरिये की जो छड़ी थी जिसके टोप के ऊपर लोहा लगा हुआ था वो उस चुंबक की ओर आकर्षित हो रही थी और गडरिया उसको खींच नहीं पा रहा था, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर से चुंबक उसको, लकड़ी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था और उतना ही ज़्यादा ज़ोर गडरिये को लगाना पड़ रहा था। तो इसीलिए उसको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा था। अगर हम किसी और लकड़ी की बात करें तो उससे अगर आप तुलना करें तो उससे ज़्यादा उस गडरिये को ज़ोर लगाना पड़ रहा था अपनी लकड़ी की छड़ी उठाने के लिए। तो कहते हैं कि वहीं से चुंबक की सबसे पहले खोज हुई थी। मैग्नस नाम के उस गडरिये ने सबसे पहले चुंबक की खोज इसी तरीके से की थी, और इसी वजह से उसके नाम के ऊपर ही मैग्नेट का नाम रख दिया गया था। और साथ में एक और स्टोरी है कि सबसे पहले जो प्राकृतिक मैग्नेट ढूंढा गया था वो जिस जगह से मिला था उस जगह का नाम भी मैग्नेशिया था। तो इस तरीके से सारे के सारे जो इत्तेफाक थे उनको मिला करके मैग्नेट का नाम मैग्नेट पर गया, जो मैग्नस है उसका नाम इस्तेमाल करके, और जिस जगह पर मैग्नेट सबसे पहले पाया गया था उस जगह का नाम भी मैग्नेशिया था, तो इसीलिए मैग्नेट का नाम मैग्नेट पड़ गया। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो मैग्नेटाइट नाम का पत्थर होता है वो क्या होता है। मैग्नेटाइट नाम का पत्थर जो होता है उसमें लोहे के कण पाए जाते हैं, और क्योंकि आप लोगों को पता है कि लोहा जो होता है वो चुंबक बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि जो लोहे की चीज़ें होती हैं वो चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं, इसीलिए जो प्राकृतिक रूप से चुंबक बनते हैं वो मैग्नेटाइट नाम के पत्थर से बनते हैं, लोहे से बनते हैं, ऐसे पत्थर से बनते हैं जिसके अंदर लोहे के कण होते हैं। और ऐसे पत्थर को जिसके अंदर लोहे के कण होते हैं उसे मैग्नेटाइट कहते हैं। तो ये स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई थी। साथ में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि प्राकृतिक रूप से चुंबक भी पाए जाते हैं और ऐसे चुंबक भी होते हैं जिन्हें इंसान बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि वो कृत्रिम चुंबक होते हैं। तो दो प्रकार के चुंबक होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक होता है और एक कृत्रिम चुंबक होता है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों के बारे में। आप लोगों को पता है कि आपके आसपास बहुत सारे चीज़ें होती हैं, कुछ लकड़ी की चीज़ें होती हैं, कुछ प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, कुछ रबड़ की चीज़ें होती हैं, और इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे लोहे की चीज़ की अगर आप बात करें, लोहे की कील या फिर लोहे की आलपिन, तो ये जो लोहे की चीज़ें होती हैं ये चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लोहा, कोबाल्ट या फिर निकल, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय और आकर्षित नहीं होते हैं, उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक, कांच, लकड़ी, चमड़ा, रबड़, कुछ भी, ये सारी चीजें जो चुंबकीय और आकर्षित नहीं होती है उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो इसी के आधार पर हम लोगों ने सबसे पहली गतिविधि की थी पिछली क्लास में, गतिविधि एक, जो कि पेज नंबर 112 पर है। इसमें आपने क्या किया था, इसमें आपने आसपास की जितनी चीजें थी उनको चुंबक के पास ले जा करके देखा था कि कौन से पदार्थ को चुंबक के पास ले जाने पर उसमें आकर्षण हो रहा है, चुंबक की ओर वो आकर्षित होता है। तो आपने देखा था कि जब आप स्केल को लेके गए थे जो कि प्लास्टिक की बनी हुई थी, उसमें कोई आकर्षण नहीं हुआ था। कील को लेकर के गए थे जो लोहे की बनी थी, तो उसमें आकर्षण हुआ था। गिलास को लेकर के गए थे जो कांच की बनी हुई है, उसको भी आकर्षण नहीं हुआ था चुंबक की ओर। कुर्सी को लेकर के गए थे जो लकड़ी की बनी हुई है, उसको जब आप लेकर के गए थे चुंबक के पास तो उसमें भी आकर्षण नहीं हुआ था। उसके बाद जब आप आलपिन को लेकर के गए थे जो लोहे की बनी हुई होती है, तो उसमें आकर्षण हुआ था क्योंकि लोहे की आकर्षण होती है चुंबक की ओर। उसके बाद जब आप जूते को लेकर के गए थे जो चमड़े की बनी होती है, तो उसका भी आकर्षण नहीं हुआ था चुंबक की ओर। तो इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि कील जो लोहे की बनी थी उसका आकर्षण हुआ था, और आलपिन का आकर्षण हुआ था जो लोहे का बना हुआ है। तो लोहे की चीजों का आकर्षण होता है चुंबक की ओर, कोबाल्ट की चीजों का आकर्षण होता है चुंबक की ओर, और निकल की चीजों का आकर्षण होता है चुंबक की ओर, और इन्हें हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और अचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, वो पदार्थ जिनका चुंबक की ओर कोई आकर्षण नहीं होता, जैसे कि प्लास्टिक, कांच, लकड़ी, चमड़ा, रबड़ आदि। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि चुंबक जो पाए जाते हैं, कृत्रिम चुंबक जो पाए जाते हैं, उनको अलग अलग आकार दिया जाता है, अलग अलग शेप दिया जाता है। जैसे कि घुड़नाल चुंबक जो होता है वो घोड़े की नाल के तरीके का शेप का होता है, और ये शेप कैसी होती है, ये इंग्लिश के अल्फाबेट यू के जैसे होती है, कैपिटल यू के जैसे शेप होती है घुड़नाल चुंबक की। तो उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि छड़ चुंबक जो होता है वो कैसा होता है। छड़ चुंबक एक छोटे साइज के छड़ के जैसा होता है, जैसे आप लोगों की ज्योमेट्री बॉक्स जो होती है, समझ लीजिए कि अगर वो बहुत छोटे साइज का हो तो वो छड़ चुंबक जैसा दिखेगा। यहाँ पर आप लोग चित्र भी देख सकते हैं, पेज नंबर 113 पर चित्र 13.1 में आप लोग को दिखाया गया है कि घुड़नाल चुंबक जो होता है वो कैसा दिखता है, उसका आकार कैसा होता है। उसके बाद उसके साइड में छड़ चुंबक कैसा दिखता है वो भी बताया गया है, और उसके आगे बताया गया है कि बेलनाकार चुंबक जो होता है वो किस तरीके का दिखता है। तो आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे कि जो बेलनाकार चुंबक होता है वो दिखने में बेलन के जैसा होता है, जो आपके घरों में बेलन होते हैं जिससे रोटी बेली जाती है, उसके आकार का होता है बेलनाकार चुंबक। इस तरीके से तीन आप लोगों को आकार के बारे में बताया गया है, और भी किसी भी शेप का आप लोग बना सकते हैं चुंबक, और अलग अलग शेप्स के बनाए जाते हैं और उनका इस्तेमाल होता है अलग अलग उपकरणों में। और किसी और काम के लिए भी अगर आपको बनाना है चुंबक तो आप उसको कोई आकार दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आकार के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने आगे बच्चों चुंबक के ध्रुव के बारे में पता लगाया था, और इसको हम लोगों ने पता लगाने के लिए गतिविधि दो की थी और गतिविधि तीन की थी, जो कि पेज नंबर 113 पर है। आप लोगों को मैंने बताया था कि चुंबक जो होता है उसके दो किनारे होते हैं, दो एंड होते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इसके दो छोर होते हैं। इसी वजह से जो ये दो छोर होते हैं इन पर दो ध्रुव भी होते हैं, दो एंड पर दो ध्रुव होते हैं चुंबक के। और चुंबक के दो ध्रुव होते हैं ये हमने कैसे पता लगाया था, ये हमने गतिविधि दो करके पता लगाया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग ऐसा कोई चुंबक लें जो छड़ चुंबक के जैसा दिखने वाला हो या फिर बेलनाकार चुंबक के जैसा दिखने वाला हो, अगर ऐसे चुंबक को लेकर के आप रेत में घुमाएंगे, रेत में उसे फेरेंगे, तो क्या होगा कि आपके रेत में जितने भी लोहे के कण होंगे वो सभी के सभी लोहे के कण आपके चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएंगे। तो एक तरीके से जो लोहे का बुरादा होता है, जो लोहे का पाउडर फॉर्म होता है, वो रेत में मिक्स्ड होता है, मिला हुआ होता है, मिश्रित होता है। तो जैसे ही आप अपने चुंबक को रेत में फेरेंगे तो क्या होगा, तो आपके चुंबक के ऊपर वो लोहे का बुरादा जो है वो चिपक जाएगा। तो जब आपने ये गतिविधि की थी तो आपने ये पाया था कि जैसे ही आपने चुंबक को रेत में फेरा था तो आपके चुंबक के ऊपर लोहे का बुरादा तो चिपका था, लेकिन वो कुछ अलग अलग जगहों पर चिपका था, ऐसी जगहों पर चिपका था जहां पर चुंबक का आकर्षण सबसे ज्यादा हो। और आपने ये देखा था कि सबसे ज्यादा चुंबक का आकर्षण जो होता है वो चुंबक के एंड्स पर होता है, चुंबक के ध्रुव पर होता है, और ध्रुव कहाँ पर होते हैं, जो चुंबक होता है उसके दो सिरे होते हैं, तो उसके दोनों सिरों पर ध्रुव मौजूद होता है, चुंबक का ध्रुव मौजूद होता है, और सबसे ज्यादा जो लोहे की चीजें आकर्षित होती हैं वो चुंबक के ध्रुवों पर ही आकर्षित होती हैं, जो चुंबक के दो सिरे होते हैं, दो एंड होते हैं, उसी पर आकर्षित होती हैं। तो ये गतिविधि करके आप लोगों को ये पता लग गया था कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। उसके बाद आपने पता लगाया था कि ये जो ध्रुव होते हैं ये दो प्रकार के ध्रुव होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक दक्षिणी ध्रुव होता है और एक उत्तरी ध्रुव होता है। उसके बाद आप लोगों ने गतिविधि तीन करके ये पता लगाया था कि किसी चुंबक का आप लोगों को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कैसे पता लगा सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर आपने क्या किया था, आपने एक चुंबक लिया था, एक छड़ चुंबक लिया था, उसको आपने एक पतली रस्सी में बांधा था, ऐसी रस्सी आपको लेनी थी जो वजन झेल सके आपके चुंबक का। उसके बाद आपने क्या किया था कि आपने उस चुंबक को बांध दिया था रस्सी में, और उसको ऐसी जगह पर मैंने आपको लटकाने के लिए कहा था जहां पर आप उसको थोड़ी देर लटकाएं तो उसे कोई छेड़े ना, कोई उसे हिलाए ना। उसके बाद आपने उस चुंबक को रस्सी में बांध करके लटका दिया था और उसको थोड़ी देर के लिए वैसे ही आराम करने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद आपका चुंबक स्टेबल हो गया था, रुक गया था, उसने हिलना बंद कर दिया था, और जैसे ही वो हिला था तो आपने हिलना जैसे ही उसने बंद किया था तो आपने ये देखा था कि वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर ही इंगित करता था, इशारा करता था। इसका मतलब यह है कि हमेशा जो स्वतंत्र चुंबक होता है, स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक होता है, वो हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा की ओर ही इशारा करता है, उत्तर दक्षिण वाली जो दिशा होती है उसकी ओर ही वो इशारा करता है। तो इस आधार पर, इस बात का इस्तेमाल करके गतिविधि तीन में आप लोगों ने देखा था कि जो फेस, जो चुंबक का सिरा उत्तर की ओर फेस किया हुआ है, उत्तर की ओर मुड़ा हुआ है, उसे हम चुंबक का उत्तरीय पार्ट कहते हैं, और जो फेस उत्तर दक्षिण दिशा के विपरीत में है उसको हम लोग चुंबक का दक्षिणी भाग कहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इस गतिविधि के आधार पर पता लगा सकते हैं कि चुंबक का उत्तरी भाग कौन सा होता है और दक्षिणी भाग कौन सा होता है। क्या किया है आपने इसमें, आपने इसमें बहुत आसान काम किया है, आपने अपने चुंबक को रस्सी से बांध करके लटका दिया है, और थोड़ी देर बाद छोड़ने के बाद जब आप चुंबक को देख रहे थे तो आपने ये देखा था कि चुंबक जो था वो हमेशा एक दिशा की ओर इशारा करता था, और वो दिशा थी उत्तर दक्षिण दिशा, और जो उत्तर दक्षिण दिशा है उसमें भी जिस ओर फेस किया हुआ है आपके चुंबक ने, जिस ओर मुड़ा हुआ है, वो उसका मुड़ा हुआ पहला वाला भाग जो है वो उत्तरीय भाग होता है चुंबक का, और दूसरा वाला भाग जो उसका होता है वो दक्षिणी भाग होता है। यहाँ पर आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं, पेज नंबर 113 पर चित्र 13.2, जिस दिशा की ओर चुंबक इशारा कर रहा है वो उत्तर दक्षिण दिशा है, और चुंबक का जो सिरा इशारा कर रहा है उत्तर दक्षिण की ओर वो है उत्तरीय भाग, और दूसरा वाला जो भाग है वो दक्षिणी भाग है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि जो चुंबक होता है उसका हम लोग दिशा सूचक यंत्र के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दिशा सूचक यंत्र होते हैं उन्हें कंपास भी कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि पुराने जमाने में लोग चुंबक का इस्तेमाल किया करते थे दिशा पता लगाने के लिए। जैसे आप लोगों ने अभी अभी देखा कि जो चुंबक है उसको जब आप स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो हमेशा एक दिशा की ओर इशारा करता है, और वो दिशा होती है उत्तर दक्षिणी दिशा। इसी बात का इस्तेमाल लोगों ने किया था, और उन लोगों ने एक यंत्र बना लिया आज के ज़माने में जिसे हम कंपास कहते हैं। कंपास में क्या होता है कि लोहे की नुकीली सुई होती है और उसके ऊपर एक चुंबकीय सुई रखी हुई होती है। यहाँ पर आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं, चित्र 13.3 पेज नंबर 114, इसमें आप लोग को दिखाई दे रहा है कि कंपास किस तरीके का होता है। ये एक कांच का डब्बा होता है छोटा सा, और इसके अंदर एक लोहे की तीखी नोक पर, लोहे की तीखी सुई की नोक के ऊपर एक मैग्नेट की नीडल रखी हुई होती है, एक चुंबक की पतली सुई रखी हुई होती है, और इसमें जैसे ही छोड़ दिया जाता है चुंबक को, स्टेबल रख दिया जाता है, चुंबक को हिलाना बंद कर दिया जाता है, कंपास को हिलाना बंद कर दिया जाता है, तो क्या होता है कि क्योंकि ये जो मैग्नेट की नीडल है, ये जो चुंबक की सुई है, ये एक बहुत पतली लोहे की नोक के ऊपर रखी हुई है, तो ये रुकने के बाद हमेशा क्या करती है, एक दिशा की ओर इशारा करती है, और वो दिशा होती है उत्तर दक्षिणी दिशा। और साथ ही में आप ये भी देख पा रहे हैं कि इस कंपास के अंदर चारों दिशाएं जो होती हैं वो कंपास के डायल के ऊपर लिखी हुई होती हैं। जैसे आप लोगों की घड़ी में 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ होता है, उसी तरीके से कंपास के ऊपर भी दिशाएं लिखी हुई होती हैं। तो जैसे ही आप कंपास को रखते हैं और वो हिलना बंद कर देती है उसकी सुई, तो वो एक दिशा की ओर इशारा करती है और वो होती है उत्तर दक्षिणी दिशा। और उसके साथ में उसके जो परपेंडिकुलर दिशा होती है वो कौन सी होती है, वो होती है ईस्ट वेस्ट वाली दिशा, मतलब पूरब पश्चिम वाली दिशा। तो आप लोगों को इससे पता चल जाता है डायल का इस्तेमाल करके कि कौन सी दिशा उत्तर की ओर है, कौन सी दिशा पश्चिम की ओर है, कौन सी दिशा दक्षिण की ओर है और कौन सी दिशा पूरब की ओर है। तो इसी तरीके से क्योंकि आप इस कंपास का इस्तेमाल कर रहे हैं दिशा पता लगाने के लिए, इसीलिए इसे दिशा सूचक यंत्र कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी चुंबक के अलग अलग गुणों के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था कि दो गुण तो आप लोगों ने जो अभी तक जितना डिस्कस किया था उसी में आप लोगों को पता लग गया था। पहला ये था कि चुंबक को अगर आप स्वतंत्रता पूर्वक कहीं पर लटकने दें, कहीं पर आप लोग उसको ऐसे रख दें कि उसे कोई हिलाए डुलाए ना, तो वो हमेशा एक दिशा की ओर इशारा करता है और वो दिशा होती है उत्तर दक्षिणी दिशा। ये पहला गुण आप लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद दूसरा गुण आप लोगों ने ये पढ़ा था कि चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं जैसे कि लोहा या फिर कोबाल्ट या फिर निकल, वो क्या करते हैं, वो लोहे की जो चीजें होती हैं वो चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि चुंबक जो होता है वो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये आप लोगों ने दूसरा गुण पढ़ लिया था। उसके बाद आप लोगों ने तीसरा गुण पढ़ा था जो ये था कि चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है, और समान ध्रुवों में उनमें प्रतिकर्षण होता है। और इसको समझने के लिए मैंने आप लोग का कहा था कि आप लोगों को गतिविधि चार करनी थी और ये गतिविधि चार है पेज नंबर 114 पर। इसमें आपने क्या किया था, इसमें आपने एक चुंबक लिया था और उसको आप लोगों ने एक रस्सी की मदद से लटका दिया था ऐसी जगह पर जहां पर वो हिलना डुलना थोड़ी देर बाद बंद कर दे और उसे कोई छेड़े ना। तो जैसे ही आप लोगों ने चुंबक को किसी रस्सी की मदद से लटका दिया था स्वतंत्रता पूर्वक, तो आप लोगों ने थोड़ी देर बाद जब वो रुक गया था उसके बाद आपने एक और चुंबक लिया था और आपने उस चुंबक का इस्तेमाल किया था एक बार ही चुंबक को उस चुंबक की ओर आकर्षित करने के लिए और दूसरी बार उस चुंबक को अपने हाथ में चुंबक की दूसरे चुंबक की मदद से दूर हटाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि आपको जो चुंबक आपने दो लिए थे उसमें पहले ही आप लोगों को नॉर्थ साउथ पता होना चाहिए कि चुंबक का कौन सा वाला भाग उत्तरीय भाग है, कौन सा वाला भाग दक्षिणी भाग है, और दूसरा चुंबक जो आपने लिया था उसका भी उत्तर और दक्षिण आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपने क्या किया था कि जब भी आप चुंबक जो लटकाया हुआ था आपने उसके उत्तर के पास अगर आप दूसरे वाले चुंबक का उत्तर वाला पार्ट लेकर आए थे तो क्या हुआ था कि चुंबक एक दूसरे के पास से दूर भाग रहे थे, और इस प्रक्रिया को हम प्रतिकर्षण कहते हैं। जब चुंबक दूसरे चुंबक को अपने से दूर हटाता है उसे प्रतिकर्षण कहा जाता है, और जब चुंबक अपने और दूसरे चुंबक को खींचता है आकर्षित करता है उसे आकर्षण कहते हैं। तो आकर्षण कब होता है, आकर्षण तब होता है जब एक चुंबक का उत्तर दूसरे चुंबक के दक्षिण की साथ में हो, तभी आकर्षण होता है। और प्रतिकर्षण कब होता है, प्रतिकर्षण होता है जब एक चुंबक का उत्तर दूसरे चुंबक के उत्तर के पास हो या फिर एक चुंबक का दक्षिण दूसरे चुंबक के दक्षिण के पास हो। तो जब भी समान ध्रुव पास में रखे जाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, और जब भी असमान ध्रुव पास में रखे जाते हैं तो उनमें आकर्षण होता है। यहाँ पर आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं पेज नंबर 114 पर चित्र 13.4 में कि जब भी चुंबक के असमान ध्रुव पास में आते हैं तो क्या होता है, उनमें आकर्षण होता है। यहाँ पर पहला वाला जो चित्र है उसमें आकर्षण दिखाया गया है जिसमें आप एक चुंबक के दक्षिण वाले भाग को दूसरे चुंबक के उत्तर वाले भाग के पास ला रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आप लोग असमान ध्रुवों को पास में ला रहे हैं। और दूसरा वाला जो चित्र है उसमें प्रतिकर्षण दिखाया है, उसमें आप ये देख पा रहे हैं कि जो समान ध्रुव हैं उन्हें पास में लाया जा रहा है जिसकी वजह से एक चुंबक दूसरे चुंबक को खुद से दूर ढकेलता है। अगर आप एक चुंबक के उत्तर को दूसरे चुंबक के उत्तर के पास लाएंगे तो भी दूर ढकेलेगा चुंबक, या फिर आप एक चुंबक के दक्षिण को दूसरे चुंबक के दक्षिण की ओर लाएंगे तब भी वो चुंबक उसे दूर ढकेलेगा। तो इस तरीके से जब समान ध्रुवों को पास में लाया जाता है तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, और असमान ध्रुवों को पास में लाने से उनमें आकर्षण होता है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग खुद का कृत्रिम चुंबक किस तरीके से बना सकते हैं। दो विधियां थी, एक विधि के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था और दूसरी विधि के बारे में आज की क्लास में पढ़ लेंगे। तो पहली विधि हम लोगों ने गतिविधि 5 की मदद से पढ़ी थी जिसमें आपने क्या किया था, आपने एक चुंबक लिया था और आपने एक लोहे की कील ली थी, और चुंबक को आपने क्या किया था, चुंबक को आपने लोहे की कील पर ऐसे रगड़ा था कि आप लोहे की कील के एक सिरे से दूसरे सिरे पर उसे रगड़ते हुए लेकर के गए थे चुंबक को, और आपने ये प्रक्रिया जब 30-40 बार दोहराई थी, आप कील के लोहे की कील के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चुंबक को रगड़ते हुए लेकर के गए थे, तो 30-40 बार ये प्रक्रिया करने के बाद आपने ये महसूस किया था कि आपका जो कील था लोहे का, वो चुंबक में परिवर्तित हो गया था। ये आपने कैसे महसूस किया था? जो आपने लोहे की कील चुंबक बनाई थी उससे, उसको आपने जब रख दिया था और उसके आसपास आलपिन, छोटी छोटी लोहे की आलपिन बिखेर दी थी, तो वो लोहे की आलपिन उस लोहे की कील की ओर आकर्षित हो रही थी। तो इसके आधार पर आप ये समझ गए थे कि आपका जो लोहे का कील था वो चुंबक में परिवर्तित हो गया था। तो इस गतिविधि से आप लोगों ने एक खुद का चुंबक बनाना तैयार किया था। उसके बाद हम आज की क्लास को शुरू करेंगे और आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गतिविधि 5 की मदद से आप लोग कैसे एक चुंबक बना सकते हैं, जिसमें आप लोग एक सेल का इस्तेमाल करेंगे और एक लोहे की कील का इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोग किस तरीके से ये कर सकते हैं ये हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो इस गतिविधि में आपको क्या करना है, आपको एक सेल ले लेना है और साथ ही आप लोगों को एक लोहे की कील ले लेनी है और आप लोगों को कुछ तार भी ले लेनी है। जो तार आपके घरों में बिजली के लिए इस्तेमाल होती है वो तार, उनमें से कोई एक तार आप लोगों को ले लेनी है, थोड़ी सी लंबी तार आप लोगों को ले लेनी है, करीब 10 सेंटीमीटर आप लोग ले लेंगे तार, तो आपकी ये गतिविधि हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लोग चित्र देख सकते हैं, चित्र 13.6 पेज नंबर 115। इसमें आप देख रहे हैं कि जो लोहे की कील आपने ली है उसके चारों ओर तार को लपेटा गया है। तो आप लोगों ने जो तार लिया हुआ है उसको भी आपको लोहे की कील के चारों ओर लपेटना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो तार आपने लोहे की कील के चारों ओर लपेटा है उसको आपको बैटरी से कनेक्ट कर देना है। जो सेल आपने लिया हुआ है उससे उसको जोड़ देना है और थोड़ी देर के लिए जोड़कर ही रखना है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि थोड़ी देर तक जब आप बैटरी से जोड़ करके रखते हैं उस तार को, तो आप जब भी लोहे की कील के पास जो आपने चुंबक बनाने के लिए यहाँ पर ली हुई है उसके आसपास जब आप लोहे की आलपिन लाएंगे छोटी छोटी, तो आप ये पाएंगे कि वो छोटी छोटी लोहे की आलपिन उस कील की ओर आकर्षित हो रही है। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि आपकी जो लोहे की कील है वो चुंबक में परिवर्तित हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने किसी चुंबक का इस्तेमाल नहीं किया है अपनी लोहे की कील को चुंबक बनाने के लिए, यहाँ पर आपने एक सेल का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब यहाँ पर आप लोगों ने विद्युत का इस्तेमाल किया है, बिजली का इस्तेमाल किया है, इसीलिए ये जो चुंबक होगा ये विद्युत चुंबक कहलाएगा। यहाँ पर आप लोग पेज नंबर 115 पर चित्र 13.6 में देख सकते हैं किस तरीके से आपका एक विद्युत चुंबक बन करके तैयार हुआ है। इसमें आपने क्या किया है, इसमें आपने एक लोहे की कील के चारों ओर तार लपेट दिया है और उस तार को आपने एक सेल से जोड़ दिया है। थोड़ी देर तक सेल से जोड़े रखने के बाद आपकी जो लोहे की कील है वो एक चुंबक में परिवर्तित हो जाएगी, जो कि एक विद्युत चुंबक कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपने बिजली का इस्तेमाल करके उस चुंबक को तैयार किया है। ये तो आप लोग समझ गए कि किस तरीके से आप चुंबक बना सकते हैं, एक विद्युत चुंबक। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है चुंबक के अलग अलग उपयोग के बारे में, दैनिक जीवन में, रोज की जिंदगी में हम लोग चुंबक के क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला है, हम लोगों ने इस अध्याय में ही पढ़ा हुआ है कि जो चुंबक है उसका दिशा सूचक यंत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, कंपास बनाने में उसका यूज किया जा सकता है। उसके बाद अगला है स्पीकर। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो हेडफोन्स आते हैं, हेडफोन्स क्या होते हैं, हेडफोन्स यंत्र होते हैं जो आप लोग अपने कान में लगाते हो गाने वगैरह सुनने के लिए, उसके अंदर भी चुंबक होता है। इसीलिए साथ ही में जहां से आप लोग बोलते हो, जो मोबाइल के अंदर आप लोग आवाज लगाते हो बोलते हो, तो उसको रिसीव करने के लिए वहां पर भी चुंबक होता है। इसी तरीके से अगर कोई बड़ा लाउड स्पीकर होगा उसमें भी चुंबक होता है, जो आप लोगों के रेडियो वगैरह होते हैं उनमें भी चुंबक मौजूद होता है। तो जितने भी स्पीकर होते हैं जिनमें से आवाज आती है उनमें भी चुंबक मौजूद होता है, तो इस रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। जो उपकरण होते हैं स्पीकर, उनमें चुंबक लगाया हुआ होता है। उसके बाद विद्युत क्रेन द्वारा लोहे की भारी वस्तुओं को उठाने में भी हम लोग चुंबक का उपयोग करते हैं। जितने भी क्रेन होते हैं, अगर उन्हें कोई भारी वस्तु उठानी होती है तो उनके क्रेन में क्या होता है, उनके क्रेन में मैग्नेट लगा हुआ होता है, चुंबक लगा हुआ होता है, और उसकी मदद से वो उस लोहे की चीज को उठा पाते हैं। उसके बाद आंख में लोहे के कण गिर जाने से क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं उस लोहे के कण को निकालने के लिए चुंबक का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगला यूज आप लोग लिख सकते हैं कि विद्युत घंटी में, जो आप लोगों के स्कूल की घंटी होती है विद्यालय की, वो विद्युत घंटी जो होती है बिजली से चलने वाली जो घंटी होती है उसमें भी चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। और विद्युत मोटर जो होती है जिससे आपके पानी टंकी में पहुंचती है, वो मोटर जो होती है उसमें भी चुंबक लगा हुआ होता है। तो इस तरीके से अलग अलग जो ये पदार्थ हैं, अलग अलग वस्तु जो हैं, इनमें चुंबक कहाँ कहाँ उपयोग होता है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद बच्चों अगर आप चुंबक का उचित रखरखाव नहीं करेंगे, अगर आप उसको ठीक से नहीं रखेंगे, तो कुछ टाइम के बाद आपकी जो चुंबक होती है उसमें से चुंबक के गुण खत्म होने लग जाते हैं, कमजोर पड़ने लग जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को चुंबक को बहुत अच्छे से रखना चाहिए। किस तरीके से आपको रखना चाहिए, आपको जब भी चुंबक रखना चाहिए तो उनके बीच में आप लोगों को एक पतली लकड़ी रख देनी चाहिए, ताकि क्या हो कि चुंबक के बीच में नॉर्थ और साउथ के बीच में आकर्षण हो, और नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ कभी भी पास में ना आए, उनके ऊपर प्रतिकर्षण जो होता है वो ना हो पाए, जिसकी वजह से उनमें उनके जो गुण है वो खराब ना हो। तो इस तरीके से आप लोग रख सकते हैं। जब आप दो चुंबक के छड़ों को छड़ चुंबक को रखें कहीं पर, तो आप लोग उसके बीच में एक लकड़ी रख देंगे, तो क्या होगा कि ज़्यादा दिन तक आपका चुंबक जो है उसके प्रॉपर्टीज बची रहेंगे, उसके गुण बचे रहेंगे, कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। उसके बाद अगला आप क्या कर सकते हैं कि चुंबक के सिरों पर नर्म लोहे के दो टुकड़े लगा सकते हैं। आपका जो चुंबक है आपके पास, उसके ऊपर आप नर्म लोहे के दो टुकड़े लगा सकते हैं, तो इससे भी आपका चुंबक काफ़ी समय तक यूजफुल रहेगा। उसके बाद अगला है कि चुंबक को आपको गिराना नहीं चाहिए, गर्म नहीं करना चाहिए, चोट नहीं मारनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि आपके चुंबक जो है उसकी चुंबकीय प्रॉपर्टी जो होती है वो कम होने लग जाती है। अगर वो बार बार गिरेगा तो उससे उसके चुंबकीय गुण कम होने लग जाते हैं, गर्म करने से भी आपका जो चुंबक है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया कि आपको क्या क्या करना चाहिए अपने चुंबक को ठीक से रखने के लिए। और इसी के साथ आपको बच्चों ये अध्याय खत्म हो गया है। अब हम लोग इस प्रश्न जो इस अध्याय के पीछे प्रश्न उत्तर है उस पर चर्चा कर लेंगे। पहला जो प्रश्न है वो उसमें आप लोगों को सही विकल्प का चयन करना है। पहला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कोबाल्ट, निकल और लोहे के जो पदार्थ होते हैं ये चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो यहाँ पर कोबाल्ट जो है इसको आप लोग टिक कर देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि चुंबक के दो सिरे होते हैं और उन्हीं दो सिरों पर दो ध्रुव होते हैं, तो आप लोग दो को टिक कर देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किसी चुंबक की अधिकतम आकर्षण क्षमता कहाँ पर होती है। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि चुंबक जो होता है उसकी अधिकतम आकर्षण क्षमता जो होती है, सबसे ज़्यादा आकर्षण उसमें कहाँ पर होता है, उसके दो सिरों पर होता है। तो आप लोग सिरों पर को टिक कर देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि विद्युत क्रेन का उपयोग कैसे होता है। तो मैंने आप लोगों को अभी भी बताया है कि विद्युत क्रेन जो होता है उसमें लोहे की भारी वस्तु को उठाने के लिए इस क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगले जो प्रश्न है उसमें आप लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न है कि चुंबक में कौन कौन से ध्रुव होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि चुंबक में उत्तरीय ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा बनाया गया चुंबक क्या कहलाता है। तो आप लोगों को पता है कि मानव द्वारा, इंसानों द्वारा बनाया गया चुंबक एक कृत्रिम चुंबक कहलाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किसके बुरादे को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आप लोगों को पता है कि लोहे के बुरादे को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे कि लोहे के बुरादे को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि चुंबक के समान ध्रुव जब पास में आते हैं तो क्या होता है। तो जब आप चुंबक के समान ध्रुवों को पास में लाते हैं तो उसमें प्रतिकर्षण होता है। वो एक चुंबक दूसरे चुंबक को अपने से दूर धकेलता है, उसे प्रतिकर्षण कहते हैं। तो चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, वो प्रतिकर्षित होते हैं। उसके बाद अगले प्रकार के जो प्रश्न है वो लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। आप लोगों को छोटे छोटे आंसर्स लिखने हैं। पहला प्रश्न है कि चुंबक किसे कहते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो अपनी ओर लोहे की चीजों को आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। उसके बाद आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जिसके दो ध्रुव होते हैं, उसके दो सिरों पर उसके दो ध्रुव होते हैं, उत्तरीय ध्रुव होता है और दक्षिणी ध्रुव होता है। साथ ही में आप ये भी लिख सकते हैं कि चुंबक को अगर आप लोग नॉर्मली रख दें कहीं पर तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इशारा करता है। और आप ये लिख सकते हैं कि चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है और समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह किस दिशा में ठहरता है। तो हम लोगों ने अभी अभी बात की हुई है कि चुंबक को अगर आप कभी भी स्वतंत्रता पूर्वक कहीं पर लटका देंगे तो वो हमेशा एक ही दिशा की ओर इशारा करता है, और वो दिशा होती है उत्तर दक्षिणी दिशा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि चुंबक के दो उपयोग आपको लिखने हैं, तो आप लोग कोई भी उपयोग लिख सकते हैं। पहला आप ये लिख सकते हैं कि चुंबक को आप एक दिशा सूचक यंत्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कंपास के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं दिशा पता लगाने के लिए। तो उसके बाद अगला आप लिख सकते हैं कि स्पीकर्स जो होते हैं जिनमें से आवाज़ आती है, स्पीकरों में भी चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। जो आपके घर की टीवी होती है उसमें भी चुंबक का उपयोग किया जाता है। विद्युत क्रेन द्वारा लोहे की भारी वस्तुओं को उठाने के लिए भी चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। आंख में अगर लोहे के कण गिर जाएं तो डॉक्टर उस लोहे के कण को निकालने के लिए चुंबक का इस्तेमाल करते हैं। विद्युत घंटी में और विद्युत मोटर में भी चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं में से आप लोगों को कोई दो उपयोग लिख देने हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि चुंबक को गर्म करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि चुंबक को अगर आप गर्म करेंगे तो क्या होगा कि उसके चुंबकीय गुण कम होने लग जाते हैं, कमजोर पड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का चुंबक जो है वो खराब हो सकता है। वो थोड़ी देर बाद लोहे की चीज़ों को या फिर चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करना बंद कर देगा अगर आप लोग उसे गर्म करेंगे। तो क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि आपका जो चुंबक है उसकी चुंबकीय गुण जो है वो कम होने लग जाते हैं, कमजोर पड़ने लग जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि दिशा सूचक यंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत इजी है, आप लोगों को चित्र बनाना है। मैंने आप लोगों को दिशा सूचक यंत्र के बारे में बताया हुआ है कि दिशा सूचक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है दिशा पता लगाने के लिए, और यहाँ पर आप लोगों को चित्र दिया गया है, चित्र 13.3 पेज नंबर 114 पर। इस दिशा सूचक यंत्र का जो चित्र आप लोगों को दिया हुआ है बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को इस प्रश्न के उत्तर के रूप में बना देना है। उसके बाद जो अगले प्रकार के प्रश्न है वो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है, थोड़े से लंबे आंसर आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप लोगों को मैंने अभी अभी सिखाया था कि विद्युत चुंबक किस तरीके से बनाते हैं। चित्र आप लोग यहाँ पर पेज नंबर 115 पर चित्र 13.6 दिया गया है, उस चित्र को आप लोग बना सकते हैं कि विद्युत चुंबक बनाना यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है, ये चित्र आप लोग बना सकते हैं। और विधि मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। इस चुंबक को बनाने के लिए, विद्युत चुंबक को बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए होती है एक लोहे की कील, साथ में आप लोगों को एक सेल चाहिए होता है। वो सेल जो आप लोग अपने टॉर्च में इस्तेमाल करते हैं वही सेल आप लोगों को चाहिए होता है, और साथ में उसके साथ में आप लोगों को एक पतली तार चाहिए होती है, 10 सेंटीमीटर की तार आप लोगों को चाहिए होती है। उसके बाद विद्युत चुंबक को बनाने के लिए आपको क्या करना होता है कि जो लोहे की कील आपने ली हुई है उसके चारों ओर आप लोगों को उस तार को लपेट देना था, और उसके बाद तार को लपेट देने के बाद में आप लोगों को उस तार को उस सेल से चिपका देना था, उस सेल से जोड़ देना था। उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप लोगों को ऐसे ही छोड़ देना था। तो थोड़ी देर बाद छोड़ देने के बाद आपने ये देखा था कि उस कील के पास अगर आप किसी छोटी छोटी लोहे की आलपिन को लाएंगे तो उसमें आकर्षण होने लग जाएगा। जो लोहे की कील आप लोगों ने लगाई हुई है सेल से जोड़ी हुई है तार की मदद से, जब उसके पास आप छोटी छोटी लोहे की आलपिन लाएंगे तो उसमें आकर्षण होने लग जाएगा लोहे की छोटी छोटी आलपिनों में। तो इससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आपकी जो कील है जिसको आपने सेल से जोड़ा हुआ है वो एक चुंबक बन चुकी है। और यहाँ पर क्योंकि उस चुंबक को बनाने के लिए आपने बिजली का इस्तेमाल किया है, विद्युत का इस्तेमाल किया है जो सेल में होती है, इसीलिए इस चुंबक को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। तो इसी तरीके से आप ये लिख सकते हैं कि आप विद्युत चुंबक किस तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रयोग द्वारा समझाइए कि चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं एवं विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं, आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो इसके बारे में हम लोगों ने जो गतिविधि के बारे में पढ़ा था वही आप लोगों को यहाँ पर बताना है। और इस गतिविधि में मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि आप लोगों को दो चुंबक लेने होते थे और एक चुंबक को आप लोगों को रस्सी की मदद से ऐसी जगह पर लटका देना था जहाँ पर उसे थोड़ी देर के बाद हिलना डुलना वो बंद हो जाए। जैसे ही वो हिलना डुलना बंद हो गई थी तो उसके पास आप दूसरे चुंबक को लाए थे, और आपने ये देखा था कि जब भी आप एक चुंबक के उत्तर को दूसरे चुंबक के उत्तर के पास लाए थे तो दूसरा चुंबक जो था वो पहले वाले चुंबक को दूर हटाने लग गया था, अपने से दूर हटाने लग गया था, और इस प्रक्रिया को हम प्रतिकर्षण कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझ में आ गया था कि जब भी कभी आप चुंबक के समान ध्रुवों को पास में लाए थे, अगर आप उत्तर को उत्तर के पास लाएं या फिर दक्षिण को दक्षिण के पास लाएं, तो क्या होता है उनमें प्रतिकर्षण होता है। चुंबक, एक चुंबक दूसरे चुंबक को दूर ढकेलता है खुद से, और इसे प्रतिकर्षण कहा जाता है। इसी के तरीके से अगर एक चुंबक के उत्तर को दूसरे चुंबक के दक्षिण के पास लाया जाए तो उनमें आकर्षण होता है, वो एक दूसरे को पास में खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, और इसे आकर्षण कहते हैं। और ये कब होता है? ये होता है जब हम चुंबक के असमान ध्रुवों को पास में लाते हैं तो उनमें आकर्षण होता है, और समान ध्रुवों को पास में लाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। और चित्र आप लोग कौन सा बना सकते हैं, चित्र आप लोग यहाँ पर पेज नंबर 114 पर चित्र 13.4 दिया गया है, आकर्षण का और प्रतिकर्षण का दोनों ही चित्र आप लोगों को दिया गया है, तो यही चित्र आप लोगों को इस प्रश्न के उत्तर के रूप में बना देना है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि लकड़ी एवं लोहे के बुरादे के मिश्रण को अलग अलग किस प्रकार आप कर सकते हैं, ये वर्णन करिए। आप लोग एक चुंबक की मदद से एक लोहे के बुरादे के और लकड़ी के बुरादे के मिक्सचर को, मिश्रण को अलग अलग बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो लोहे का बुरादा होता है वो चुंबक की ओर आकर्षित होता है और लकड़ी का जो बुरादा होता है वो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है। तो जैसे ही आप चुंबक को एक लोहे के बुरादे और लकड़ी के बुरादे के मिश्रण के पास लाएंगे तो क्या होगा कि लोहे का जो बुरादा है वो सारा का सारा चुंबक के ऊपर चिपक जाएगा और लकड़ी का बुरादा सारा का सारा वहीं रह जाएगा। तो इस तरीके से आप इस मिश्रण में से लोहे के सारे बुरादे को अलग कर सकते हैं और लकड़ी का बुरादा वहीं का वहीं रह जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो इसी के साथ में आप लोगों का ये अध्याय जो है वो खत्म हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने अध्याय को फिर से सारे अध्याय को पढ़ लेना है एक बार। कहीं पर भी आपको दिक्कत आए तो आपको अपने टीचर से जरूर पूछना है। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।